have a high calling.
तो आपके सामने एक बड़ी ही ऊंची बुलाहट है.
You are a true preacher of the word of God. You have a great privilege.
अगर आप परमेश्वर के वचन के प्रचारक हैं, तो आपके पास एक बड़ा ही सौभाग्य है.
You are a true preacher of the word of God. You have a great responsibility.
अगर आप परमेश्वर के वचन के प्रचारक सच्चे प्रचारक हैं, तो आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है.
You must understand who you are.
आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन हैं.
What your responsibilities are.
कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं.
And what your accountability is.
और आपके जवाबदेही क्या है.
Look in 1 Corinthians.
पहले कुरिन्थियों मेरे साथ देख लीजिए.
As we begin this morning, let's be reminded again of these things.
और जैसे आज की सुबह हम आरंभ करते हैं, आइए हम इन बातों के बारे में पुनः याद करें.
Who are we?
हम हैं कौन आखिरकार?
What is our main requirement?
हमारे मुख्य जिम्मेदारी क्या है?
What is our final accountability?
और अंत में हमसे कौन जवाब लेगा?
We've looked at this passage before.
इस स्थल को हम पहले भी देख चुके हैं.
But if you are a preacher, you need to constantly be remembering these truths.
और अगर आप सुसमाचार का प्रचार का कार्य करते हैं, तो आपको इन सत्यों को बार बार याद दिलाना है अपने आप को.
Chapter 4, verses 1 to 5.
और चौथा अध्याय, पहला ग्रंथ तो चौथा अध्याय, पहले पद से लेकर के पांचवे पद तक.
Number 1.
पहली बात.
The identity of the preacher.
सबसे पहले एक प्रचारक की पहचान क्या है?
Who is he?
कौन है आखिर?
He has two identities.
एक प्रचारक के पास दो, उसकी दो पहचाने हैं.
Look at the verse.
उस उन पदों को देखिए.
Number one.
पहली बात.
He is a servant of Christ.
वो मसीह का सेवक है.
Number two.
और दूसरी बात.
He is a steward of the mysteries of God.
और वो परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी है.
If you are truly called by God.
अगर आप वास्तव में परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं.
You need to understand your identity.
तो आपको अपनी पहचान को समझना है.
Number one,
पहली बात,
you are a servant of Christ.
आप मसीह के सेवक हैं.
You are not the Lord or the boss of the master of the church.
आप कलीसिया के मालिक नहीं हैं, कलीसिया के साहब नहीं हैं, और कलीसिया के आप स्वामी नहीं हैं.
You are a servant.
आप एक सेवक हैं, दास हैं.
You are not first of all a servant of men.
आप लोगों के दास नहीं हैं.
You are a servant of Christ.
लेकिन आप मसीह के दास हैं.
You have been bought with a price.
आपको एक कीमत देके पुकारा गया है, बुलाया गया है.
Called by God.
आपको परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है.
You have been given a responsibility.
और आपको एक जिम्मेदारी दी गई है.
Who are you?
कौन है आखिरकार आप?
You are a servant of Christ.
आप मसीह के सेवक हैं.
Number two.
दूसरी बात.
You are a steward of the mysteries of God.
और परमेश्वर के जो रहस्य हैं, उनके आप भंडारी भी हैं.
What is a steward?
एक भंडारी कौन होता है?
He is not the owner of the house.
वो एक किसी घर का मालिक नहीं होता है.
He has been given charge and management of the house.
लेकिन उसको किसी घर की जिम्मेदारी दी जाती है संभालने के लिए.
God has given him a stewardship.
और परमेश्वर ने उसको भंडारीपन दिया, संचालन करने के लिए. उसको एक वरदान दिया हुआ है, एक बुलाहट दी है, एक सेवकाई दी है. उसको परमेश्वर का वचन दिया गया है.
And he must be responsible.
और उसको जिम्मेदार होना जरूरी है.
And he has to protect it.
उसकी सुरक्षा करनी है उसे.
He has to use it.
और उस वरदान को इस्तेमाल करना है.
He has to increase it.
और उसको जो बढ़ाना है, जो सेवा प्रभु ने दी उसे. वो परमेश्वर के रहस्यों का वो एक भंडारी है.
What is the mystery of God?
और परमेश्वर का रहस्य आखिरकार है क्या चीज?
It is the coming of Jesus Christ and his gospel.
वो ये है कि यीशु मसीह आने वाला है और उसका सुसमाचार.
What is the mystery of God?
परमेश्वर का रहस्य क्या है आखिरकार?
It is the establishment of the true church made up of Jew and Gentile.
वो ये है कि परमेश्वर के सच्चे कलीसिया की स्थापना की जाए, जिसमें यहूदी और गैर यहूदी दोनों मिल करके पाए जाते हैं.
You have been given the gospel.
आपको सुसमाचार दिया गया है.
You have been given a ministry.
आपको एक सेवकाई दी गई है.
You have been given the word of God.
आपको परमेश्वर का वचन दिया गया है.
You are in the church of God.
आपका परमेश्वर कलीसिया में.
You are called by Christ.
आपको मसीह के द्वारा बुलाया गया.
You have been given a stewardship.
आपको एक जिम्मेदारी, आपको एक भंडारीपन दिया गया.
You are not your own.
आप अपने आप अकेले नहीं
हैं. You are not the boss of the church.
आप कलीसिया के मालिक नहीं
हैं. We do not preach ourselves.
हम अपना स्वयं का प्रचार नहीं करते.
We handle the mysteries of the living God.
लेकिन हम जीवित परमेश्वर के रहस्यों को बताते हैं लोगों को. लेकिन इसलिए अगर आप सच्चे प्रचारक हैं, तो आपको पहली बार पहचानना पड़ेगा कि आखिरकार आप हैं कौन. और आपके भीतर परमेश्वर का एक पवित्र, अत्यंत पवित्र भय होना ही होना चाहिए.
Number two.
दूसरी बात.
What is the main requirement of the preacher?
और जो एक प्रचारक है उसकी क्या मांग क्या है, क्या उसे उसकी आवश्यकता करना क्या चाहिए उससे.
Verse two.
दूसरी बात.
In one word, what is the main requirement?
दूसरे शब्द में इसको इसके क्या इसको क्या करना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसे क्या मांगा जा रहा करने के लिए.
Look at the verse.
यहाँ पे देखिए दूसरे पद में देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके इसको क्या करना चाहिए, इसके किस चीज से पहचान होनी चाहिए इसको. हाँ जी, विश्वास योग्यता.
It is required that he be faithful.
और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एक भंडारी को आवश्यक है कि वो विश्वास योग्य हो.
It is not an option.
ये वैकल्पिक नहीं है, ये नहीं कि चाहे तो हो चाहे तो ना हो.
Requirement, it is a commandment.
ये जरूरी है या आवश्यक है और एक आज्ञा भी है.
God gives you a gift.
परमेश्वर आपको एक वरदान देता है.
God gives you a ministry.
परमेश्वर आपको एक सेवा देता है.
God gives you a Bible.
परमेश्वर आपको एक वचन अपने पवित्र शास्त्र देता है. परमेश्वर ने बुलाहट दिया आपको.
God has given you the gospel.
परमेश्वर ने सुसमाचार दिया आपको.
God has given you to be a servant of the church.
परमेश्वर ने एक बुलाया आपको कलीसिया का सेवक होने के लिए.
And if you are lazy,
और अगर आप आलसी होते हैं,
you are irresponsible,
अगर आप गैर जिम्मेदारी होते हैं,
the wrong motives,
अगर आपके गलत मनसाएं होते हैं,
your own desire,
आप अपनी स्वयं की इच्छाओं को ढूंढते हैं,
if you do not fulfill your ministry,
अगर आप अपनी सेविका को सेवा को पूरा नहीं करते
हैं, you will not be approved,
तो फिर आपको प्रभु ग्रहण योग नहीं करेगा.
You must be faithful.
आपको विश्वास योग होना जरूरी है.
That means you must fulfill what God has called you to do.
इसका मतलब ये है जो भी प्रभु ने आपको बुलाया है करने के लिए आपको उसको पूरा करना ही करना है.
नंबर थ्री,
तीसरी बात.
The judgment of the preacher.
और जो प्रचारक है उसका किस मामले में या किस तरह से न्याय होगा.
Verses 3, 4, and 5.
और तीसरे चौथे और पांचवे पद में.
Look at verse 3.
किस तरह से न्याय होगा प्रचारक का. तीसरे चौथे पद में देखिए.
Human judgment is inadequate and incomplete.
जो मानवीय न्याय है, जो मनुष्य लोग जो न्याय करते हैं वो अधूरा है और काफी नहीं है.
Verse 3.
तीसरा पद.
It's a very small thing that I am examined by you or any human court.
ये तो बड़ी छोटी बात है कि मैं तुम्हारे द्वारा या किसी मानवीय न्यायालय के द्वारा हमारा न्याय किया जाए.
Paul said the judgment and the opinion of men is not the most important thing for me.
पौलुस कहता है कि लोगों का न्याय और लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है.
He's not seeking to please men.
वो लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं कर रहा है.
He's seeking to please God.
वो परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है.
Said in Galatians chapter 1.
पौलुस कहता है गलतियों उसके पहले अध्याय में और दसवें पद में.
Am I still trying to please men?
क्या मैं अभी भी मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ.
I'm trying to please men. I cannot be a servant of Christ.
अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ तो मैं मसीह का सेवक नहीं हो सकता हूँ.
The opinion and judgment of other men is not our first concern.
और लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, लोग हमारा कैसे क्या न्याय करते हैं, ये हमारी मुख्य चिंता नहीं है, पहली चिंता नहीं होनी चाहिए.
Determine the success or failure of our ministry. हमारी
सेवा की सफलता या असफलता लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे न्याय करते हैं, उसके ऊपर निर्भर बिल्कुल भी नहीं है.
Human judgment is inadequate and incomplete.
और जो मनुष्यों का न्याय है हमारी सेवा को लेकर के वो काफी नहीं है, वो और अधूरा है, उसकी चिंता हमको नहीं करनी चाहिए.
Look at the end of verse 3 and verse 4.
लेकिन तीसरे पद के अंत में और चौथे पद में देखिए.
Self judgment is incomplete and inadequate.
स्वयं का न्याय करना भी, हम खुद जब अपना न्याय करते हैं वो भी अधूरा है और वो भी काफी नहीं है, ठीक नहीं है.
He says, I do not even examine myself.
वो कहता है यहाँ पे कि मैं स्वयं को खुद को अपना जांचता नहीं हूँ.
Because my own judgment of myself is not completely accurate.
क्योंकि जब मैं खुद का न्याय करता हूँ या खुद को परखता जांचता हूँ तो वो भी काफी नहीं है.
Verse 4.
चौथा पद.
He says, I am conscious of nothing against myself.
वो कहता है कि मैं अपने विरोध में किसी भी बात में दोषी नहीं पाता हूँ अपने आप को.
That is when I examine my life and ministry, my own conscience is clear and pure.
और वो कहता है चौथे पद में कि जब मैं अपने जीवन और अपनी सेविकाई को जांचता हूँ अपने आप तो पाता हूँ कि मेरा विवेक स्पष्ट है, साफ है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई जा रही.
But he says I'm not by this acquitted or free.
और लेकिन वो कहता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं ठीक हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया और सही साबित कर दिया गया हूँ.
Human judgment is incomplete.
वो कह रहा है कि जो बाकी लोग हैं उनका न्याय काफी नहीं है. जो मैं स्वयं खुद का अपना न्याय कर रहा हूं वो भी काफी नहीं है, लेकिन एक जो प्रचारक है उसका सही न्याय किस तरह से होगा, कौन करेगा उसका सही तरीके से न्याय, आखिरकार कौन है वो व्यक्ति जो उसका सही मायने में न्याय कर सकता है एक व्यक्ति का, वो किस समय उस व्यक्ति का न्याय होगा ये भी बताइए हमको आप। और चौथे पद में देखिए इसको आप, आखिरी हिस्सा देखिए चौथे पद के, कौन है वो व्यक्ति जो इस व्यक्ति का न्याय करेगा आखिरकार, और जो मेरा न्याय करा वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु ही है। तो फिर पौलुस का अंत में निष्कर्ष क्या पहुंचता है यहाँ पे, वो कुरिन्थियों के लोगों को क्या बता रहा आखिरकार, और वो ये कह रहा है कि लोगों के बारे में जो सुसमाचार का प्रचार काम करते हैं उनको लेकर के तुम्हारे मन में विचित्र गलत भावनाएं हैं।
They said, this preacher is a good preacher.
वो लोग ये कहते हैं कि ये वाला जो प्रचारक बहुत बढ़िया प्रचारक है।
I will follow him.
और लोग कहते हैं कुरिन्थियों के कुछ लोग कह रहे हैं हम उसके पीछे चलेंगे, लेकिन कुछ और लोग कुरिन्थियों कहते हैं नहीं 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 ये जो प्रचारक है वो बढ़िया है उसके पीछे हम चलेंगे।
According to the standards of the world.
तो वो जो कुरिन्थियों के लोग हैं संसार के स्तर के अनुसार प्रचारकों का न्याय कर रहे थे और उनको सही या गलत ठहराने की कोशिश कर रहे थे।
Paul said, therefore, do not pass judgment before the time.
और इसीलिए पौलुस कहता है इसलिए समय से पहले न्याय घोषित मत करो।
Don't determine one man ministry success, one man's ministry is failure.
और पौलुस कह रहा है कि तुम ये मत कहो कि एक व्यक्ति की सेवा बढ़िया है और दूसरे व्यक्ति की सेवा असफल है केवल बाहरी कार्यों को देख करके।
It's not the judgment of man.
ये जो मनुष्यों का न्याय है वो काफी नहीं है,
not the eye of man.
जो आंखें मनुष्यों की उससे हम नहीं न्याय कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो न्याय है और परमेश्वर की आंखें हैं।
It is not to determine the success of a man's ministry now.
और मनुष्य की सेवा की सफलता को हम अभी नहीं माप सकते हैं।
Paul said, wait until the Lord come.
और पौलुस कह रहा है कि मनुष्य की सेवा की सफलता को मापने के लिए रुके रहो जब तक कि प्रभु वापस ना आ जाए और वो न्याय करें।
That is the time to determine the success of a man's ministry.
और वो ही समय होगा कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति की सेवा सफल हुई है या असफल हुई है।
And look at verse 5.
और इसीलिए पांचवें पद को हमारे साथ देखिए।
What will happen at that last judgment for the preacher?
और आखिरी समय में उस प्रचारक के न्याय के समय क्या होगा उसके लिए, दो बातें होंगी।
Number one,
पहली बात,
he will bring to light the things hidden in the darkness.
और परमेश्वर जो जो बातें छिपी हुई हैं अंधकार में उनको खोल करके सामने प्रकाश में रख देंगे प्रभु जी।
No one else sees,
जो चीजें कोई देख नहीं सकता है, किसी और को मालूम नहीं है।
What a man does in secret when he's all alone.
और एक आदमी क्या करता है जब वो एकांत में अपने आप अकेले होता है,
This will be revealed.
ये सामने प्रकट कर दिया गया, दिखा दिया जाएगा
secret action.
उसके गुप्त में छिपे हुए कार्य।
But number two,
लेकिन दूसरी बात,
his inward motive.
लेकिन साथ ही साथ ना सिर्फ उसके कार्य जो छिपे हुए प्रकट कर दिए जाएंगे लेकिन उसके अंदर की जो भावनाएं वो भी सामने ला करके रख दी जाएंगी।
And he will reveal the motives or thoughts of men's heart.
और उस व्यक्ति के मन की भावनाएं और इच्छाएं और विचार लोग परमेश्वर सामने खोल करके प्रकट करके दिखा देंगे आखिरकार मनसा क्या है उसकी।
Why did we serve God?
क्यों हमने किस उद्देश्य से उसकी सेवा करी? क्यों हमने प्रचार किया?
Why were we leaders in the church?
क्यों किस उद्देश्य से हम कलीसिया के अगुवे बने थे?
He will judge the motives of our heart.
और हमारे मनों की मनसाओं और उद्देश्यों का प्रभु जी न्याय करेंगे।
We didn't serve for money.
हमने पैसे के लिए तो सेवा नहीं की, कहीं
serve for benefit.
कहीं हमने फायदे के लिए तो सेवा नहीं की,
serve for power.
क्या हमने ताकत के लिए तो सेवा नहीं की,
serve for the praise of man.
क्या लोगों की सराहना के लिए तो हमने सेवा नहीं की, क्या हमने स्वयं का प्रचार तो नहीं किया,
Christ Jesus as Lord.
क्या हमने केवल यीशु मसीह का प्रचार किया प्रभु के रूप में,
ourselves as servants for Christ's sake.
और क्या मसीह के खातिर हमने अपने आप को लोगों के सामने मसीह का सेवक दास करके प्रकट किया।
And then,
और फिर उसके बाद,
only then,
तभी उसके बाद केवल,
each man receive his praise from God.
हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से उसकी सराहना उपासना मिलेगी।
Listen carefully.
मेरी बात सुनिए ध्यान से।
Who are you?
कौन है आखिरकार आप?
You are a servant of Christ.
आप मसीह के दास हैं एक।
You are the stewards of the mystery of God.
और परमेश्वर का जो रहस्य है उनका भंडार आपको दिया गया है.
God has given you a treasure more valuable than 10,000 worlds.
और परमेश्वर ने जो आपको खजाना दिया है वो इस दुनिया के 10,000 दुनिया से भी ज्यादा महंगा है, कीमती है.
And you must protect it.
और जो खजाना आपको दिया उसकी आपको सुरक्षा करनी ही करनी चाहिए.
Faithfully discharge your ministry.
और आपको विश्वास योग्यता के साथ अपनी सेवा को अंजाम देना चाहिए, करना चाहिए, पूरा करना चाहिए.
Character of your life,
आपके जीवन का चरित्र,
content of your preaching,
आपके प्रचार के विषय वस्तु,
and the faithfulness of your service,
और आपकी सेवकाई की विश्वास योग्यता.
Those are the main things.
ये तीन, ये कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं.
The character of your life,
आपके स्वयं के जीवन का चरित्र,
the content of your preaching,
और आप क्या प्रचार करें, आपके प्रचार के सामग्री, विषय वस्तु,
faithfulness of your service,
और आपके विश्वास योग्यता के साथ की गई सेवा.
One day,
एक दिन,
very soon,
बहुत जल्दी,
you,
आप,
you,
आप,
you,
और आप,
you,
और आप, और मैं प्रभु के सामने खड़े होंगे हम लोग, और वो प्रभु जी हमारी सेवा को न्याय करेंगे.
Not a judgment for salvation.
और जो न्याय प्रभु जी हमारा करेंगे वो हमारे उद्धार का न्याय नहीं करेंगे. मैंने आपसे कई बार कहा है हमारे उद्धार का न्याय कब हुआ था?
At the cross of Christ.
क्रूस के ऊपर, मसीह के क्रूस के ऊपर हमारे उद्धार का न्याय हो चुका है.
But James said this,
लेकिन याकूब ने ये कहा है,
not many of you be preachers, brethren.
भाइयों तुम में से बहुत अधिकांश लोग सेवक ना बने, प्रचारक ना बने. क्यों?
Because you will have a stricter judgment.
क्योंकि हमारा न्याय और भी अधिक कठोर होगा.
To whom much is given, much is required.
जिसको अधिक दिया गया है उससे अधिक मांगा भी जाएगा.
You may not be an educated man.
हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हो.
But God has chosen you.
लेकिन प्रभु ने आपको चुना है.
And he has given you a treasure.
और प्रभु जी ने आपको एक खजाना दिया है.
This treasure is an earthen vessel.
और ये खजाना हमारे मिट्टी के पात्रों में है.
And your responsibility.
और आपकी जिम्मेदारी.
To be a clean vessel.
आपको एक शुद्ध पवित्र बर्तन होना है.
And to understand the truth.
और सत्य को समझना आपको.
And to be faithful in the fulfillment of your ministry.
और आपको विश्वास योग्य रहना है अपनी सेवकाई की परिपूर्णता में और करने में.
God may have given you one talent.
हो सकता है प्रभु ने आपको केवल एक ही तोड़ा दिया हो. हो सकता है आप में से किसी को 5 तोड़ा दिया हो. हो सकता है किसी को 10 तोड़ा दिया हो.
Your responsibility is to take your talent and to use it and to multiply it for the glory of God.
और प्रभु ने ये कहा है आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो भी जितना भी तोड़ा आपको मिला उसको लेकर के आपको विश्वास योग्यता से रखना और उसको गुणात्मक तरीके से उसकी वृद्धि करनी, आपको बढ़ाना है उसे.
The master of the house will return.
क्योंकि एक दिन घर का मालिक वापस आएगा आपके पास.
He will ask you to give an account for your stewardship.
और प्रभु जी आपसे कहेंगे तुम्हें जो काम दिया गया, तो जो भंडारीपन तुम्हारे पास सौंपा गया था उसका तुम हिसाब किताब दो हमको अभी.
And some of you men here have heard more truth than many Indian preachers will for the entirety of their life.
और आप में से कुछ भाई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने समस्त भारत के जितने मसीह विश्वासी उनसे ज्यादा सत्य को सुन चुके हैं जो वो अपने जीवन भर में सुनेंगे शायद अभी.
Great blessing there is great responsibility.
और बड़ी बड़ी आशीषों के साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, ये भी याद रखिएगा.
Great responsibility there is great accountability.
और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी जवाबदेही भी होगी, ये भी याद रखिएगा, हिसाब किताब होगा.
And every day,
और प्रतिदिन
you ought to get up,
आपको उठना चाहिए, अपने घुटनों पे होइए.
And remember this truth.
और इस सत्य को याद रखिए, एक दिन,
very soon,
बहुत जल्दी
I'll stand before Christ,
प्रभु के सामने मैं खड़ा होऊंगा. और मैं अपने जीवन के लिए हिसाब दूंगा प्रभु के सामने, मेरी सेवा के लिए, मेरे चरित्र के लिए, मेरे उदाहरण के लिए, मेरे प्रचार के लिए, मेरे धर्म विज्ञान के लिए, मेरे सामग्री के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए. और ये सब बातें के बारे में जब आप सोचे तो आपके मन में भय होना चाहिए परमेश्वर के लेकर के, पवित्र भय. और आप कहेंगे भाई आप तो हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं.
I sure am.
और हाँ मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं.
because this is serious.
क्योंकि ये बड़ी ही गंभीर बात है.
Too many preachers have fallen by the way.
और बहुत सारे प्रचारक हैं जो रास्ते में गिर जाते हैं.
Too many preachers have not guarded their heart.
और बहुत सारे प्रचारक जिन्होंने अपने हृदयों को इसकी सुरक्षा नहीं की है.
Too many preachers have quit the secret place of prayer.
बहुत सारे प्रचारकों ने गुप्त के प्रार्थना के जगह को छोड़ दिया.
Too many preachers have been unfaithful in their marriage.
और बहुत सारे प्रचारक लोग हैं जो अपने विवाह में अविश्वास योग्य हैं.
Too many preachers have neglected their family.
और बहुत सारे प्रचारक लोग जिन्होंने अपने परिवार को अनदेखा किया है.
Too many preachers have not been responsible in studying the word of God.
और बहुत सारे प्रचारक हैं जो परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार नहीं रहे.
And where are they now?
और फिर कहां हैं वो लोग आज?
They're with Judas.
वो लोग यहूदा के साथ हैं.
They're with Demas.
वो लोग दिमास के साथ हैं.
They're with all those people that turned away from following Christ.
और ये उन सारे लोगों के साथ है जो मसीह के पीछे चलने से फिर गए, मुड़ गए, पलट गए.
He that endures until the end will be saved.
वो जो अंत तक बना रहेगा वही बचाया जाएगा.
And here is the question.
और प्रश्न यहाँ पे आपके सामने. 5 साल के बाद,
10
साल के बाद,
20 years,
20 साल के बाद,
will you still be here?
क्या आप फिर भी प्रभु के साथ होंगे?
Will you be in the way?
क्या आप फिर भी मार्ग में चल रहे होंगे?
Will you be following Christ?
क्या फिर भी आप मसीह के पीछे चल रहे होंगे?
Will you be faithful unto death?
क्या आप मृत्यु तक प्रभु के प्रति विश्वास योग रहेंगे?
Love not your life.
क्या आप अपने जीवन से प्रेम नहीं करेंगे?
And you are faithful to the word of the testimony.
और आप गवाही के वचनों के प्रति विश्वास योग रहेंगे.
That's who you are.
क्या आप इस तरह के जन हैं?
And that's your main responsibility.
और यही आपकी मुख्य जिम्मेदारी है, यही तरह का व्यक्ति होना.
That's what awaits us.
और यही हमारे लिए इंतजार कर रहा है.
Therefore,
इसलिए,
2 Timothy,
दूसरा तिमुथियुस,
and chapter 4,
और चौथा अध्याय, दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय.
When you are studying to prepare messages to preach,
जब आप संदेशों को प्रचार करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं,
and when you stand in this place to preach and teach the word of God,
और जब आप इस जगह पे खड़े होकर के प्रचार करते हैं परमेश्वर के वचन का,
you may speak to 10 people in a little house in a village.
हो सकता है आप एक छोटे से कमरे में, एक गांव में केवल 10 लोग के सामने प्रचार कर रहे हैं.
You may preach to several hundred people in a church in a city.
हो सकता है आप किसी शहर में कई सौ लोगों के सामने प्रचार कर रहे हो.
But every time you seek to study the word of God,
लेकिन जितनी बार आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करने आ रहे हैं,
and every time you stand or sit to teach or to preach the word of God,
और जितनी बार आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, शिक्षा करने के लिए खड़े होते हैं,
you need to understand two things.
आपको एक बात, दो बातों को समझना जरूरी है.
Look at chapter 4.
चौथे अध्याय को देखें.
2 Timothy.
दूसरा तिमुथियुस.
Chapter 4.
चौथा अध्याय.
And verse 1.
और पहला पद.
Two things.
दो बातें.
Number 1.
पहली बात.
The present eye of God.
परमेश्वर का वर्तमान में देखने की नजर.
Number 2.
दूसरी बात.
The future judgment of Christ.
और मसीह का भविष्य का न्याय.
Do you see that?
क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे?
Do you believe in the inspiration and authority and power of the word of God?
क्या आप परमेश्वर के वचन की प्रेरणा और परमेश्वर के वचन के अधिकार पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं?
Now these were some of the last words Paul ever wrote.
ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पौलुस ने शायद आखिर अपने जीवन के आखिर समय में लिखे हैं.
And you remember there were no verse or chapter divisions when he was writing.
आपको याद है कि जब पौलुस इन चिट्ठियों को लिख रहा उस समय बाइबल में अध्याय नहीं लिखे थे और पद नहीं लिखे थे, उनको बांटा नहीं गया था अध्याय और पदों में उस समय तक. उसने ये नहीं कहा कि मेरा, मैंने तीसरा अध्याय लिख दिया, अब मैं चौथा अध्याय लिखने जा रहा हूं.
He preached one long letter.
वो एक लंबी चिट्ठी को प्रचार कर रहा है.
And it is connected together.
और वो साथ में जुड़ा हुआ है.
And what has he told us in the end of chapter 3?
और तीसरे अध्याय के अंत में उसने हमको क्या बताया?
He said, Timothy, from a child you've known the sacred scriptures able to give you the wisdom that leads to salvation.
उसने ये कहा कि तिमुथियुस तुमने बचपन से पवित्र शास्त्र के बारे में जाना है जो कि हमें धार्मिकता की शिक्षा दे सकती है और उसके साथ हमारा उद्धार हो सकता है उसकी वजह से.
He says, Timothy, remember your salvation.
और पौलुस कह रहा है, तिमुथियुस याद करो तुम्हारा उद्धार.
And remember what the word of God is.
और याद रखो कि परमेश्वर का वचन क्या है.
All scripture, verse 16, is given by inspiration of God.
और 16 पद में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है
for teaching or instruction.
और हमारे निर्देश के लिए और सिखाने के लिए लाभकारी है, उपयोगी है.
Reproof, correction, training in righteousness.
और हमारे धार्मिकता के लिए, सुधार के लिए, शिक्षा और ताड़ना के लिए सही है.
Not just to fill the mind full of knowledge,
केवल हमारे मस्तिष्क को ज्ञान से भर देने के लिए नहीं,
but to prepare the life in righteous living.
लेकिन धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए तैयार करने के लिए सक्षम है.
Verse 17.
और 17 पद.
So that the man of God would be adequately equipped for every good work.
और ताकि परमेश्वर का जन हरे काम करने के लिए सही रहे, कुशल और तत्पर हो जाए.
Then he says, therefore.
और फिर वो कहता है इसलिए.
I solemnly charge you in the presence of God.
और वो कहता है कि परमेश्वर मनुष्य के सामने मैं तुमको ये आज्ञा देता हूँ.
Christ Jesus, who is coming to judge by his appearing and his kingdom.
और फिर वो कहता है कि मसीह जो आने वाला है जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए.
When a man studies in his study,
और जब एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठ करके अध्ययन करता है,
stands up to give a simple devotional,
और जब वो खड़ा होता है एक वचन में से हल्का सा कुछ बांटने के लिए,
when he opens the Bible to teach his children,
और जब अपने बच्चों को वचन खोल कर सिखाता है,
and especially when he stands to preach and teach to sinners or to saints,
और जब वो खड़ा होता है विशेष तौर से पापियों या संतों को बीच में प्रचार करने के लिए,
need to remember two things.
और उसको दो बातें याद रखना है.
Number one,
पहली बात, परमेश्वर देख रहा है,
God is listening.
और परमेश्वर सुन रहा है.
Number two,
आप दूसरी तीसरी दूसरी बात, एक दिन
I'm gonna stand before Christ.
परमेश्वर के सामने मैं मसीह के सामने खड़ा होगा और हिसाब दूंगा मैं.
Do you ever think about that?
क्या कभी आप इस कारण सोचते हैं?
Most preachers don't.
अधिकांश प्रचारक नहीं सोचते हैं.
They think about the eye of man.
वो सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में.
The immediate response.
वो सोचते हैं कि अभी क्या लोग प्रत्युत्तर करेंगे.
Man lives in prayer.
लेकिन अगर एक व्यक्ति प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेगा,
very edge of eternity,
और वो अनंत काल के अंत में बिल्कुल उसके नजदीकी में जीवन व्यतीत कर रहा है,
he knows life is short,
और वो जानता है कि जीवन कम है, छोटा है,
eternity is coming,
और अनंत काल का समय आने वाला है,
time of opportunity is little,
और अवसर का समय बहुत थोड़ा बाकी है उसके लिए,
his responsibility is great,
और उसकी जिम्मेदारी बड़ी है,
his stewardship is large,
और उसके जो भंडारीपन का कार्य वो बड़ा है,
and his accountability will be in the future.
और फिर अंत में परमेश्वर उससे जवाबदेही लेगा.
Do you think about that?
तो आप सोचिए इसके बारे में.
If we had a picture of your mind over the last one month,
अगर हम पिछले एक महीने में आपका जो दिमाग में जो आपके दिमाग का हम चित्र ले सके,
and we ran the thoughts of your mind up here on a screen,
और आपके दिमाग में जो जो बातें आपके मस्तिष्क में जो जो बातें चल रही विचार चले थे उनको हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अगर हम चला दें,
would we ever see these thoughts pass through your mind?
क्या हम इन तरह के विचारों को हमारे मस्तिष्क में आते हुए देखने पाएंगे?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
You must understand who you are.
आपको ध्यान से समझना है कि आप हैं आखिर कौन, आपसे क्या आवश्यकता मांगी जा रही है.
Your own assessment of yourself is not accurate.
आपके स्वयं का लेखा जोखा लेना काफी नहीं है.
Paul said in Romans 12, let not any man think more highly of himself than he ought to think.
और पौलुस रोमियों 10 अध्याय में कहता है कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपने से अधिक बेहतर ना समझे जितना उसे समझना चाहिए.
Have an accurate understanding of your gift.
अपने जो वरदान है उनका सही सही अवलोकन करिए आप.
An accurate understanding of your calling.
और अपनी बुलाहट का सही अवलोकन करिए.
An accurate understanding of your ministry.
और अपनी सेवा का सही अवलोकन करिए.
Don't think too highly of yourself.
अपने आप के बारे में बहुत ऊंचा मत समझिए.
Don't think too lowly of yourself.
और अपने बारे में बहुत नीचा मत समझिए.
Don't think accurately as God has given to each man a measure of faith.
और हर एक व्यक्ति को अपने बारे में ठीक ठीक समझना चाहिए उस अनुसार जो परमेश्वर ने उसको विश्वास दिया है.
Know who you are.
और जानिए आप कौन है.
Stewardship is.
और आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपके आपका भंडारीपन क्या है आपके लिए, और अंत में आपका न्याय क्या होने वाला
है.
और अगर आप उस तरह सोचेंगे प्रतिदिन, और अगर आप अनंत काल के प्रकाश में होकर के जिएंगे, और जब आप परमेश्वर के वचन का अनुवाद करने के लिए आएंगे, तो फिर आप आलसी नहीं होंगे और आप गैर जिम्मेदार नहीं होंगे.
You will study to show yourself approved unto God.
और आप अपने आप इसलिए मेहनत करेंगे अध्ययन करने के लिए ताकि आप परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य प्रस्तुत हो.
Not acceptable or pleasing to man.
और लोगों के सामने ग्रहण योग्य और लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं.
Approved unto God.
और पर लेकिन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होने के लिए.
When you're all alone.
और जब आप अकेले होंगे
with the Bible
वचन के साथ
and the Spirit of God,
और परमेश्वर का आत्मा होगा आपके साथ
you're seeking to study,
और आप पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे
you need to remember something.
और आपको एक बात को याद रखना है
God
परमेश्वर
is watching.
परमेश्वर आपको देख रहा है.
So when we come to interpret the word of God,
और जब हम परमेश्वर के वचन का अनुवाद करने के लिए आते हैं
we must handle accurately the word of God.
तो हमें परमेश्वर के वचन को सही तरीके से ठीक ठीक सटीक तरीके से उसको देखना है हमें.
So when we come to consider principles of Bible interpretation,
जब हम परमेश्वर के वचन के व्याख्यान करने के सिद्धांतों की बात करते हैं
we need to understand that is a stewardship.
तो हमको याद रखना कि ये एक जिम्मेदारी है.
If you are born again,
अगर आपका नया जन्म हुआ है
called by God,
अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है
gifted by God,
अगर परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है
help of the Holy Spirit,
अगर पवित्र आत्मा का आपके मदद है आपके पास और आप उसके वचन को जानते हैं
willing to work hard,
और अगर आप उसको करने के तैयार हैं हो सकता है आप पढ़े लिखे ना हो
यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड
लेकिन आप परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं
एंड यू कैन प्रिपेयर सिंपल क्लियर मैसेजेस दैट इंडियन पीपल अंडरस्टैंड
और तो आप साधारण स्पष्ट समझ संदेशों का तैयारी कर सकते हैं जो कि हमारे लोग समझ सकते हैं इनको.
Our goal is not to impress people.
हमारा लक्ष्य ये नहीं कि हम लोगों को प्रभावित करें कि हम कितना जानते हैं. ये लक्ष्य नहीं है कि हम बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करें. हमें बड़े बड़े वाक्यों को नहीं उपयोग करना है. हमें ये संसारिक विचारधाराओं को उपयोग नहीं करना है. हमको ये लोगों को नहीं दिखाना कि हमको कितना आता है. लेकिन हमारा उद्देश्य क्या प्रचार करने में पहली बात
क्लियरली एक्सप्लेन द वर्ड ऑफ गॉड
परमेश्वर के वचन को सफाई से बताना समझाना. दूसरी बात
यू कैन रीच द माइंड and the heart and the conscience of people.
ताकि आप लोगों के हृदय मस्तिष्क और विवेक तक पहुंच सकें भेज सकें उनको.
And if it's unclear in your mind,
लेकिन अगर आपके स्वयं के मस्तिष्क में साफ नहीं बातें तो फिर आपके मुंह में साफ नहीं होगा बात.
If it's unclear in your mouth,
अगर आपके मुंह में बात साफ नहीं होगी
unclear in their ears,
तो वो उनके कानों में बात साफ नहीं होगी.
If it's unclear in their ears,
अगर उनके कानों में बात साफ नहीं होगी
they will not understand it or believe it in their heart,
तो फिर वो लोग अपने हृदय में समझेंगे नहीं विश्वास नहीं करेंगे.
They don't understand and believe it, they cannot grow.
अगर वो लोग समझेंगे नहीं विश्वास नहीं करेंगे तो लोग बढ़ नहीं पाएंगे. और आपकी जिम्मेदारी
to clearly understand and plainly speak the word of God.
कि आप उसको सफाई से समझें और सफाई से बोलें उसको.
So the most uneducated Indian in the village can understand what you're saying.
और तो जो सबसे अनपढ़ गांव में रहने वाला व्यक्ति है वो भी समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं.
And if you don't properly interpret it,
अगर आप उसको सही तरीके से आप उसका अनुवाद नहीं करेंगे
don't clearly understand it,
तो अगर आप उसको सही तरीके से समझेंगे नहीं
you cannot plainly explain it.
तो आप उसको सफाई से उसको समझा भी नहीं पाएंगे.
So where does it begin?
तो कहां शुरुआत होता है?
The proper interpretation of the word of God.
परमेश्वर के वचन का सही तरीके से व्याख्यान करना.
Yesterday we talked about the most basic principles of biblical interpretation.
तो कल हमने बात किया था बहुत ही आधारभूत सिद्धांत परमेश्वर के वचन के व्याख्या करने का.
So we're seeking very quickly to apply that to a few passages and questions to see how it works.
तो हम बड़े जल्दी से प्रयास कर रहे हैं देखने के लिए कि इन खंडों में कैसे जो सिद्धांतों की बात कर रहे हैं वो लागू होती है.
So turn quickly to the book of Acts.
तो फिर जल्दी से मेरे साथ प्रेरित काम की पुस्तक को खोल लीजिए.
The book of Acts chapter 2.
प्रेरित काम उसके दूसरे अध्याय.
Chapter 2 and verse 44.
और दूसरा अध्याय 44 पद.
It describes the early church.
वहां पे आरंभ प्रारंभिक कलीसिया का वर्णन किया गया है.
Peter has preached the gospel and many people have been saved.
और पतरस ने प्रचार किया और बहुत सारे लोग बचाए गए.
Verse 41, there were added about 3,000 souls.
और वहां पे 41 पद में लिखा है, दूसरा अध्याय प्रेरितों काम दूसरा अध्याय 41 पद की लगभग 3,000 आत्माएं शामिल हो गई उसमें.
Verse 43, they continued to know the presence and the power of God.
और 42 पद में वे लोग परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करते रहे, समझते रहे.
Verse 44 and 45.
44 और 45 पद.
They were all together united with the same heart and same spirit.
वे सब लोग साथ में थे, एक ही आत्मा में और एक ही एकता में.
Verse 45.
45 पद.
They began selling their property and possessions and sharing them with all as anyone had need.
और फिर उन्होंने जो भी उनके पास सामान था उनको बेचना शुरू कर दिया और जो कुछ भी सबको साझा कर लिया, जिसको आवश्यकता होती थी उसको बांट देते थे.
Chapter 4.
पांच चौथा अध्याय.
Chapter 4 verse 32.
चौथा अध्याय उसका 32 पद. एक ही बात हो रही, वही बात हो
रही है.
और वे यहाँ पे लिखा है कि विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण था. और कि वो लोग प्रेम में और आत्मा में एक थे.
And what was the result?
और वे उसका परिणाम क्या था?
Claimed anything belonging that was his own.
और वहाँ पे कोई भी ऐसा, उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको वो कहते कि मेरी ही है केवल ये.
All things were common property to them.
लेकिन सब कुछ वहाँ पे साझे की थी, सारी संपत्ति साझे की थी.
What was the result?
तो फिर परिणाम क्या हुआ?
Verse 34.
34 पद.
There was not a needy person among them.
उनमें से कोई गरीब नहीं था.
How did this happen?
ये कैसे हो गया वहाँ पे?
All who were owners of land or houses sold them and brought them to the apostles' feet, that it might be verse 35 distributed to all.
क्योंकि 34 और 35 में वहाँ पे लिखा है कि सब लोग, जो लोग गरीब थे, सब लोग जिनके पास संपत्ति थी, धन संपत्ति जमीन थी, वो बेच देते थे और वो पैसा ला करके प्रेरितों को दे देते थे, प्रेरित लोग बांट देते थे जो लोग गरीब थे उनके यहाँ.
So here's the question.
तो प्रश्न ये है.
That the responsibility and practice of all Christians throughout all ages at all times.
क्या हर एक समय के हर एक मसीहों की ये जिम्मेदारी और ये काम होना चाहिए इसी तरह से जैसे ये लोग कर रहे हैं? हाँ जी. हाँ किसने बोला? हाँ कौन बोला? हाँ कौन बोला? भाई जल्दी बताइए, नाम बताइए. हमें दे दिया अपना सामान, हमसे बाद में मिल लीजिएगा. ध्यान से इस बात को. जब हम ऐतिहासिक वृतांत, ऐतिहासिक घटनाओं का हम अनुवाद कर रहे हैं, जब व्याख्यान कर रहे हैं, और विशेष तौर से प्रेरितों काम की पुस्तक को, और जो आरंभिक कलीसिया, शुरुआत की जो कलीसिया, उनके कार्यों को, तो आपको ये प्रश्न पूछना है.
What is prescribed, described? What is, you got that word? What is prescribed as commandment and what is described by way of practice?
तो दो चीजें हैं. क्या चीजें यहाँ पे वर्णात्मक हैं? कौन सी चीजें निर्देशात्मक हैं? ठीक है, वर्णात्मक मतलब वर्णन किया जा रहा है घटना का, बताया जा रहा है हमको, या निर्देश दिया जा रहा, निर्णयात्मक है, निर्देशात्मक है, निर्देशात्मक. निर्देश दिया जा रहा है कि वर्णन क्या है? वर्णन क्या है कि निर्देश?
वर्णन.
नहीं भैया, बांटना नहीं चाहते हैं आप. ध्यान सुनिएगा इस बात को. अच्छा, अभी बताइए आप कैसे निर्णय करेंगे कि ये निर्देशात्मक है कि वर्णनात्मक है? समझेंगे नहीं समझे? कैसे कैसे पता चलेगा कि जो यहां पर बताया जा रहा है वो केवल बता रहा है हमको क्या हुआ वहां पे, या कह रहा है हुआ है और तुमको भी करना है? तो कैसे पता चलेंगे कि ये बता रहा है कि खाली बता रहा है कि बता भी रहो, कह रहा करो भी तुम भी, तो करना भी हमको. अपना तालाब दे दीजिए मछली वाला, हमारे नाम करवा दीजिएगा उमेश भैया. हैं, कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? निर्देश नहीं है.
I've come here for 5 or 6 years.
मैं यहाँ पे लगभग 5-6 साल से आ रहा हूँ.
I don't have a house.
मेरे पास घर नहीं है.
I don't have a car.
मेरे पास गाड़ी नहीं है.
See, I see you wear the same outfit every day.
और आप देखते हैं मैं रोज ही एक ही कपड़े पहनता हूँ.
But nobody's given me a house.
और किसी ने भी अभी तक मुझे घर नहीं दिया.
Nobody's given me their clothes.
और किसी ने मुझे अपने कपड़े नहीं दिए.
Nobody's given me their money.
और किसी ने अपने पैसे नहीं दिए.
This is what the Bible says the Christian ought to do.
लेकिन बाइबल तो ये कह रही है कि मसीह को यही करना चाहिए.
How do we determine whether this is practically applicable specifically to us?
और हम कैसे जानेंगे कि जो भी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं वो व्यवहारिक तौर से हम मसीहों के ऊपर लागू होती कि नहीं होती है?
two things.
दो बातें.
Number one,
पहली बात,
you study the historical context and immediate context of the passage.
पहली बात, आप वहां के ऐतिहासिक संदर्भ को और जो तुरंत अगल बगल की आसपास की जो घटना हो रही है वहां के संदर्भ को अध्ययन करिए. ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ और पास के नजदीकी संदर्भ को का अध्ययन करिए पहली बात. फिर दूसरी बात,
you determine whether any place or part in the remaining of the scripture specifically speaks to and confirms this action.
और फिर आप पहले जब आप उसके वहां के ऐतिहासिक और वहां का जो नजदीकी आसपास का तुरंत का जो संदर्भ है आगे पीछे क्या रहा उसको जब आपने अध्ययन कर लिया वहां पे क्या चल रहा था उस घटना को, फिर उसके बाद दूसरी बात आपको ये देखना है कि क्या वचन में कहीं और किसी और जगह वचन ने उसी बात को दोबारा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है निर्देश के रूप में, या उसको कंफर्म के पुख्ता किया जा रहा है, पक्का किया जा रहा है, क्या दोबारा कहीं और खंड में परमेश्वर के वचन में कहीं और उसको हमें निर्देश के रूप में पुख्ता किया जा रहा है, बताया जा रहा है, करने को कहा जा रहा है.
Jesus said, "Do not lay up for yourselves treasures in heaven."
Yeshua Masih ne ye. Yeshua Masih ne ye kaha. Yeshua Masih ne ye kaha. A lot of people believe that. Yeshua Masih ne ye kaha ki tum apne liye पृथ्वी पर धन संचय मत करो. यीशु मसीह ने ये कहा, लेकिन अपने लिए स्वर्ग में तुम धन संचय करो.
Now, what does the prosperity preacher say in India?
लेकिन जो समृद्धि का जो प्रचार करते हैं हिंदुस्तान में वो लोग क्या कहते हैं,
God wants you to be rich.
प्रभु चाहता है कि आप अमीर हो जाएं.
God wants you to be healthy.
प्रभु चाहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाएं.
God wants you to have many possessions.
प्रभु चाहते हैं कि आपके पास बहुत ढेर सारी संपत्ति हो जाए.
And he wants you to lay up treasures on earth.
और प्रभु चाहते हैं कि आप इस जमीन पे पृथ्वी पे धन संचय करें.
He wants you to have your best life now.
और प्रभु जी चाहते हैं कि आप अपने सबसे उत्तम जीवन अभी यहीं पे जी लीजिए अभी.
But that's not what Jesus taught.
लेकिन ये तो यीशु मसीह ने नहीं सिखाया ना.
Sell your possessions, he said.
यीशु मसीह ने कहा अपनी संपत्ति बेच डालो.
And give to charity.
और दे दो दान में.
And you will have treasures in heaven.
और जब तुम ऐसा करोगे तो स्वर्ग में तुम्हारे पास धन होगा.
Then you have to add the additional revelation of scripture to those passages.
और फिर आपको जो यीशु मसीह ने कहा है उसके आगे जो प्रकाशन किया गया है और खंडों में उनको भी उस शिक्षा में जोड़ना पड़ेगा. दो बातें,
study the context,
संदर्भ को पढ़िए,
and use scripture interpreting scripture.
और फिर वचन ही वचन को समझाता है, उस सिद्धांत को इस्तेमाल करिए, वचन ही वचन की व्याख्या करता है, ये जो व्याख्यात्मक शास्त्र का व्याख्या शास्त्र का जो सिद्धांत है उसको इस्तेमाल करिए, उपयोग करिए.
So we have to ask several questions to this passage.
तो हम इस खंड के से कई प्रश्न पूछेंगे.
And you give the answer.
मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप उत्तर देते आइए.
What place or what town is this happening in?
कौन से शहर में और कौन सी जगह पर किस समय ये घटना हो रही है?
Jerusalem.
यरूशलेम में.
What day or particular festival is it?
और कौन सा दिन है या कौन सा विशेष त्यौहार यहाँ पे चल रहा है?
What happened on Pentecost?
और पेंटेकोस्ट के दिन फिर क्या हुआ था?
Where did all these people come from?
ये लोग कहाँ से आते हैं सब लोग?
Now, if you study,
Jerusalem and its surroundings.
If you study the context,
अगर आप संदर्भ को पढ़ेंगे,
some of them were already living in Jerusalem.
कुछ लोग तो यरूशलेम में रह रहे हैं.
But the great majority of them came from different parts of Egypt, Mesopotamia, Asia Minor, Europe, and as far away as Rome.
तो कुछ लोग हैं, अगर आप संदर्भ को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो यरूशलेम में रह रहे हैं, विश्वासी वो लोग, उनके पास वहाँ पे रहने की जगह है. लेकिन अधिकांश विश्वासी लोग, कुछ लोग आए हैं एशिया माइनर, तुर्की से आए हैं, कुछ लोग तुर्की से आए हैं, कुछ लोग सीरिया से आए हैं, कुछ लोग अलग अलग दूर दूर जगह से आए हैं, कुछ लोग मिस्र से आए हैं, ठीक है, मैसिडोनिया से, मकेदोनिया से, अलग अलग जगह से आए.
Were Greek speaking Jews or Gentile proselytes?
और यहाँ पे कुछ हैं जो यूनानी भाषा बोलने वाले यूनानी लोग हैं और यहूदी पृष्ठभूमि के लोग हैं, और कुछ लोग हैं जो गैर यहूदी पृष्ठभूमि के हैं जो अब यहूदी धर्म में आ गए.
Now before they came to Jerusalem, were they Christians?
जब ये लोग जो यहाँ पे जो लोग हैं, जब ये लोग यरूशलेम में आए थे, यरूशलेम आने से पहले क्या ये लोग मसीही थे?
What happened to them in Jerusalem?
तो जब ये लोग यरूशलेम में आए तो क्या हो गया इनको?
They became Christians.
वो लोग मसीही बन गए.
3,000 of them.
एकदम से 3,000 लोग.
Then when Peter preached the second time, 5,000 more perhaps were added.
और फिर जब पतरस ने प्रचार किया, लगभग 5,000 और लोग जुड़ गए.
They didn't go home.
और वो लोग घर नहीं गए फिर.
So what's the problem?
आप समस्या क्या है बताइए.
What are they going to eat?
कहाँ खाएंगे ये लोग?
Where are they going to live?
कहाँ रहेंगे ये लोग?
What's going to provide for them?
कौन देगा इनको खाने पीने के लिए?
And so what happened?
फिर क्या हुआ इसलिए?
Spirit of God moved people's hearts.
परमेश्वर की आत्मा ने लोगों के हृदयों को छेदा, बदला.
Those Jews that had been converted, they were already converted, already living in Jerusalem. God opened their hearts.
तो फिर वे यहूदी लोग जो लोग यरूशलेम में रह रहे थे, जिनका हृदय परिवर्तन हुआ, और जो लोग वहां उस शहर में रहे थे, और अब जिनको जो नए बन गए, परमेश्वर ने उनका हृदय को बदला, उन यहूदियों का.
And he opened their hand.
और ना सिर्फ प्रभु ने उनका हृदय बदला, लेकिन उन्होंने अपनी मुट्ठी भी खोली.
And he opened their pocketbook.
और फिर उन्होंने अपनी जेबें भी खोली.
And he opened their home.
और उन्होंने अपने घरों को भी खोल दिया.
Now before man is Christian,
और मसीह बनने से पहले एक व्यक्ति कैसा होता है?
He's like this.
वो ऐसे होता है और सब अपने पास रखता है. मसीह बनने से पहले एक व्यक्ति, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, आप नहीं ले सकते मुझसे. मैंने मेहनत किया इसके लिए, मैं इसका मालिक हूँ, ये तुम्हारा नहीं है. लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह बन जाता है, तो वो एक नया प्राणी होता है, और परमेश्वर उसका हृदय बदल देता है, उसका हृदय खोल देता है, उसका हाथ खोल देता है, और फिर उसका घर भी खुल जाता है. उसके घर यरूशलेम में एक समस्या थी.
Hundreds and hundreds of people were there unexpectedly, got saved and remained there.
और सैकड़ों लोग, हजारों लोग एकदम से, जिनकी आशा नहीं की गई थी, वो लोग बच गए, बदल गए, और वो लोग अब वहीं पे यरूशलेम में एकदम से.
And you had a very special, historical, unusual, extraordinary circumstance.
और वहां पे एकदम से अद्भुत, अनोखी, अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं की गई थी, उस तरह की घटना है और परिस्थिति है यरूशलेम में इस समय. इसलिए परमेश्वर ने वहां पे उस समय इनको इस तरह का कार्य करने के लिए बाध्य किया. तो अब प्रश्न ये है,
is that prescriptive and commanded or descriptive?
और अब प्रश्न ये है, क्या ये वर्णात्मक है कि निर्देशात्मक है?
Or if it is simply descriptive of what happened, what timeless principle can we extract from this example?
तो अगर आप कह रहे हैं कि ये निर्देशात्मक नहीं है, लेकिन वर्णनात्मक है, वर्णन कर रहा है, बता रहा है हमको क्या हुआ है, तो इस वर्णनात्मक घटना से हम ऐसा कौन सा सिद्धांत अपने लिए ले सकते हैं जो हर एक समय की कलीसिया के विश्वासियों पे लागू होता है? क्या हम इस घटना से, जो वर्णन की गई घटना, उससे कोई सिद्धांत, आत्मिक सिद्धांत हम सीख सकते हैं जो हर एक समय के विश्वासियों और कलीसियाओं पे हमेशा तक लागू होता रहेगा?
If God has not necessarily commanded all Christians to sell their possession and distribute it so everyone has the same amount of money, same house, same car, same everything, what timeless principle can be extracted from this passage?
तो आप लोग ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने ये निर्देश यहाँ पे नहीं दिया है कि हर एक व्यक्ति को बेच देना चाहिए सब कुछ, और हर एक मसीह के पास एक ही जैसा घर होना चाहिए, एक ही जैसी गाड़ी होनी चाहिए, एक ही जैसे कपड़े होने चाहिए. आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये निर्देश नहीं है. अगर ये निर्देश नहीं है, प्रभु जी नहीं कह रहे कि सब कुछ बेच के सबके पास बराबर एक ही जैसे सामान होना चाहिए, तो फिर उसमें से क्या संदेश हमको दिया जा रहा है? क्या शिक्षा यहां से विश्वासियों के लिए, हमेशा के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए दी जा रही है? कोई शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही? कुछ लागू होता हमारे ऊपर कि नहीं लागू होता?
Give me three verses in the New Testament that give you some exhortation to a timeless principle here.
और ये जो समय से ना बंधा हुआ जो सिद्धांत है यहां पे, हमेशा के लिए जो सिद्धांत यहां पे शिक्षा पाया जाता है, उसको समझाने के लिए नए नियम में कोई तीन हमको ऐसे पद दीजिए जो हमको बताएंगे कि इसको हम कैसे लागू करेंगे अपने ऊपर. कम से कम तीन कोई नए पद नए नियम से. कोई तीन नए पद, तीन पद, उदारता से, खुशी से दान देने वाला, उदारता से देने वाले की बात. अच्छा हाँ जी, कहाँ पे है? हाँ जी, सेकंड कुरिन्थियस चैप्टर 8, दूसरा कुरिन्थियस 8 अध्याय, उदारता से देने की
बात.
दूसरा कुरिन्थियस उसका 8 अध्याय क्या कहता भैया? हाँ जी, कहाँ लिखा है?
Let those that have much share with those that have little, in order that there might be equality. Is that 2 Corinthians?
No.
9, 8 or 9?
No, in look at chapter 8, it's talking about giving.
2 Corinthians, is that right?
2 Corinthians chapter 8. In verse 14, it talks about your
right.
What you have more would be given to those who don't have.
So that there might be equality.
अच्छा, दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय उसके 14 पद को देखिए क्या लिखा है. दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 14.
If you take this verse out of its context, you will misapply it.
आप फिर से ध्यान दीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 14 पद को अगर आप संदर्भ से बाहर निकालेंगे तो आप उसका गलत लागूकरण करेंगे.
What is the context?
संदर्भ क्या है दूसरा कुरिन्थियों में?
Paul is taking a collection for the poor saints in Jerusalem.
Paulus jo hai Jerusalem ke gareeb vishwasiyon ke liye ek daan bator raha hai.
The Corinthian is a very wealthy church.
Lekin jo Corinthian ki kalisya hai wo badi dhani kalisya hai.
They had already pledged to support the poor saints in Jerusalem.
The Corinthian kalisya ne pehli pratigya ki thi ki Jerusalem mein jo gareeb vishwasi hain unki hum sahayata karenge. Unhone kaha tha pehle.
So he says, you who have much should share with those that have little, so at this time there might be equality.
तो इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से कह रहा है कि तुम्हारे पास जिसके पास बहुतायत है वो जिनके पास नहीं है उनको दें ताकि दोनों के बीच में समानता पाई जा सके.
That doesn't mean at all times in every generation all Christians must be exactly equal in their status and possession.
इसका ये मतलब नहीं कि हर समय और हर जगह के विश्वासियों को उनके संपत्ति के मामले में बिल्कुल एक समान होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है.
It means that extraordinary times when there are extraordinary needs then those that have much should share with those that have little.
लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है जब अप्रत्याशित समय होता है, जब मुश्किल का समय होता है, कठिनाई का समय होता है, जिनके पास अधिक है उनको, जिनके पास कम है उनके साथ बांटना चाहिए, देना चाहिए, जरूरी है. कोई और पद बताइए, कोई और बताइए जो हमको दिखाता है प्रेरितों काम में जो घटना हुई है उसका लागूकरण विश्वासियों के जीवन में. हाँ जी, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय
9:7, same context, same purpose, same experience, same circumstance.
उसी तरह का संदर्भ है दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय से 7 पद में. प्रेरितों काम एक्ट 20 35. It's better to give than to receive.
Yes. Let me ask you a question.
मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता
हूँ. Where did Jesus say that in the gospel?
यीशु मसीह ने सुसमाचार में कहाँ कहा? कहा लेने से देना धन्य है. यीशु मसीह सुसमाचार में कहा है लेने से देना धन्य कि नहीं है? यीशु मसीह ने कहा है क्या? Jesus said, if you give, then you'll receive.
Listen carefully. Outside of the Gospel and Acts, find me one or two more verses. We want to find something that supports a timeless principle here.
सुसमाचार और प्रेरितों काम से अलग हटकर के हमको दो तीन पद और बताइए. जल्दी जल्दी जल्दी. 20:35. किसमें? प्रेरितों काम के अलावा. प्रेरितों काम के अलावा, सुसमाचार के अलावा, उसके बाहर कोई और स्थल बताइए. कहाँ बता रहे
हैं?
Romans chapter 12 verse 8. रोमियो 12:8 क्या लिखा है भैया? 12:8 में क्या लिखा है?
Oh,
it's about just giving gifts. There is gifts.
Verse 13.
Romans chapter 12 verse 8. The one who gives should give it generously.
Yes, look at verse
13. और तेरा पद देखिए उसी का. तेरा पद देखिए उसी का. रोमियो 12:13.
Give me another verse.
रोने वाले 13 में पवित्र लोगों की आवश्यकता में हो, उनकी सहायता करो, भावनाएं करने में लगे रहो. कोई और पार्ट बताइए. हाँ जी, गलेशियन 6:10.
Galatians 6:10.
Galatians 6:10.
While we have opportunity to go to all people, especially those of the household of faith.
इसलिए जहाँ तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ.
Give me one more word.
एक और पद दीजिए हमको. Philippians 4:16.
Paul is talking about the Philippians.
Paul is Philippians के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे.
He's talking about giving here to the preacher.
और यहाँ पे बात कर रहा है वो प्रचारक को देने के लिए.
Or even in Thessalonica, you sent a gift more than once for my needs.
यहाँ पे तुमने मेरी सहायता एक बार नहीं, अनेक बार दान भेजे हैं. पौलुस अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं.
Give me another word.
कोई और पद दीजिए. हाँ जी. उनसे बात कर रहा है जिनके पास दूसरों लोगों से तुलना में ज्यादा पैसा है.
And what does he say?
और फिर उनसे क्या कहता है वो?
Number one,
पहली बात,
if you've got money, don't be proud.
पहले कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा तो घमंडी ना हो.
Number two,
दूसरी बात,
if you got money, don't hope in your money.
और दूसरी बात, अगर तुम्हारे पैसा है तो अपने पैसे पे आशा मत करो.
But number three,
लेकिन तीसरी बात,
open God,
अगर परमेश्वर पे भरोसा रखो.
And number four,
और चौथा पर चौथी बात,
use your money to care for others, good works, and sharing.
और तुम जो पैसा है उसको उपयोग करो दूसरों की सहायता करने के लिए और अच्छे कार्यों के लिए. तो पहला तुम्हें तो 6:17-18 उन्हें आदेश दे कि भले कार्य करें, भले कार्यों में धनी बने, दानशील हों और उदार हों.
So here are a few basic biblical interpretive principles.
तो यहाँ पे कुछ बड़े ही आधारभूत बुनियादी नियम है व्याख्या शास्त्र के.
Study the specific historical situation and immediate context.
वहाँ की ऐतिहासिक स्थिति को वहाँ के जो हाल के नजदीकी संदर्भ में देखिए.
If there is some practice in the early church, ask what timeless principle is embedded in it and can be applied to us.
अगर आरंभिक कलीसिया का कोई कार्य है, कोई काम उन्होंने किया है, उसको जब आप देखते हैं तो फिर उसको देखिए उस कार्य में, उस घटना के भीतर ऐसी कौन सा निर्देश है जो शिक्षा है उसके भीतर पाई जाती है जो हम सबके ऊपर लागू होगी हमेशा तक.
And then use other clear scripture in the New Testament to confirm that principle.
और फिर उस सिद्धांत को पुख्ता करने के लिए, सही देखने के लिए नए नियम के अन्य खंडों को भी देखिए जो आपको उसको बता सकते कि हाँ सही है ये.
And if you come up with one idea from a historical book, but there's no other commandment or exhortation in the rest of the scripture to do it, you may be not on thin ice, you may say and speak something that is not applicable for all.
Or agar aap jo aitihasik vrittant hai naye niyam mein, aitihasik ghatnaye hain, unko jab aap padhte hain aur unme se koi siddhant nikalte hain और फिर उस सिद्धांत को समझने के लिए, समझाने के लिए, लागूकरण करने के लिए नए नियम में आपको कोई और पद नहीं मिलते हैं, तो शायद आप गलत व्याख्या कर रहे हैं और शायद आप कमजोर भूमि पे खड़े हुए हैं, सही अनुवाद नहीं कर रहे हैं आप.
This is especially true with historical narrative and particularly the book of Acts.
और विशेष जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिद्धांत आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है विशेष तौर से प्रेरितों काम की पुस्तक के लिए और ऐतिहासिक वृत्तांतों के लिए, घटनाओं के लिए.
We're simply trying to make you sensitive to how you look at and properly interpret the word of God.
तो हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि आपको हम सिखाएं और संवेदनशील होना सिखाएं कैसे सही तरीके से परमेश्वर के वचन का व्याख्या करना.
So if you say this,
अगर आप ये कहें,
well, Paul said, the Philippians more than once were willing to share in my need and give me gift.
और अगर आप ये कहें कि पौलुस ने कहा कि फिलिपियों के विश्वासी लोग एक बार नहीं, अनेकों बार उन्होंने मेरी सहायता की और मेरी आवश्यकता को पूरा किया. अगर आप ये कहें, पौलुस ने कहा फिलिपियों के विश्वासियों ने एक बार नहीं, कई बार मेरी आवश्यकता को पूरा किया है.
And I was praying this morning, I had a vision from the Lord from this verse.
और आज की सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था और इस पद से प्रभु जी ने मुझसे बातचीत की और मुझे दर्शन दिया.
And God said from this verse that you ought to share in my need.
और परमेश्वर ने मुझसे कहा इस पद के द्वारा कि आप लोगों को मेरी आवश्यकता में मेरे साथ बांटना चाहिए, आपको पूरा करना चाहिए मेरी आवश्यकता.
And he actually gave the specific amount each of you should give.
और फिर परमेश्वर ने मुझको ये भी बताया कि आप में से सबको ठीक ठीक कितना पैसा देना चाहिए मुझे मेरी सहायता करने के लिए. जिस तरह से फिलिपियों के विश्वासियों ने पौलुस की सहायता की थी, उसी तरह से आपको भी मेरी सहायता करनी चाहिए.
Is that a proper interpretation and application of the verse?
क्या क्या ये उस पद का सही व्याख्या है और सही लागूकरण है?
जी
कौन बोला जी
भैया
15,000 दे दिएगा हमको बाद में. बहुत सारे प्रचारक लोग ऐसे करते हैं. हमारा नाम हम बता देंगे, चेक दे देगा. बहुत सारे प्रचारक लोग ऐसे करते हैं.
Is it proper if someone in the church has a specific extraordinary need for the church to rise up and seek to meet that need?
क्या ये सही बात है कि अगर कलीसिया में कोई जन है और उसकी कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कलीसिया को साथ में मिल करके उसको पूरा करें? क्या करना चाहिए? क्या ये सही है?
That is an application of a timeless principle from a historical situation.
और ये चीज कलीसिया में कोई व्यक्ति इसकी आवश्यकता है उसकी कलीसिया मिल करके सहायता करे, ये लागूकरण है जो प्रेरितों काम में जो घटना हुई है, उस जो ऐतिहासिक वृतांत है उसका एक लागूकरण है जो कि एक सिद्धांत है, हमेशा तक कलीसिया में विश्वासियों के ऊपर लागू हो गई होगा.
So we're just trying to encourage and teach you how to be sensitive to the word of God and ask specific questions.
तो हम यहाँ पे क्या प्रयास कर रहे हैं, हम आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ें तो आप सीधे सीधे प्रश्न पूछें और उनको सही तरीके से लागू करें.
And this is what it means to handle accurately the word of God.
और परमेश्वर के वचन को ठीक ठाक लागू करने का मतलब, इस्तेमाल करने का मतलब, उपयोग करने का मतलब यही है.
So I'll be standing at the back door with my bag open.
और अभी इसके बाद मैं पीछे के दरवाजे पे खड़ा होऊंगा, अपना थैला लेकर के खड़ा होऊंगा, खुला हुआ थैला.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए आप लोग.
You must not misapply the word of God.
आपको परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से लागू नहीं करना चाहिए.
You must be sensitive to context and background.
और आपको संदर्भ और पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उन बातों को.
You say that's too hard. That gives me a headache.
आप कहेंगे अरे ये बड़े कठिन बात है, मेरे को सर दर्द होने लगा, चक्कर आने लगा.
I give you two choices.
मैं आपको दो चुनाव देता हूँ, दो ऑप्शन देता हूँ.
Have a headache now?
हाँ, दो विकल्प देता हूं. अभी सरदर्द कर लीजिए या तो अभी,
I have a headache then.
या फिर तब बाद में सरदर्द लीजिएगा.